Market Mantra, Mantra. Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to today's edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Monday, we'll also be taking calls from our listeners on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464. And of course, do prefix the code 011. I am Sarabjit Kaur with my co-anchor Amrish Saxena.
Namaskar. Aarthik Khabron ke karyakram Market Mantra mein aapka swagat hai. आज सोमवार है और हर एक सोमवार की तरह आज भी हम आपके सवालों को सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे. आप इस कार्यक्रम में व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं. सवाल पूछने के लिए हमारे सीधे नंबर हैं 2331-4444 और 2342-1050 और हमारा तीसरा नंबर है 2331-0464. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. जब आप हमें कॉल करें तब अपने रेडियो सेट की आवाज धीमी रखें ताकि हम एक बेहतर क्वालिटी के साथ एक दूसरे को सुन सकें. आपके प्रश्नों का उत्तर देने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा. शिशिर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
नमस्कार, धन्यवाद.
पहले हेडलाइंस के साथ हैं सरबजीत कौर.
बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस स्नैप 4-डे गेनिंग स्ट्रीक. सेंसेक्स ड्रॉप्स ओवर 450 पॉइंट्स. निफ्टी क्लोजेस एट 25,517. Gross GST collections hit an all-time high of 22.8 lakh crore in the financial year 2024-25 and crude oil prices fall slightly. Brent crude trading at $67.64 per barrel.
घरेलू शेयर बाजारों में चार दिन से चली आ रही बढ़त आज थम गई. सेंसेक्स 450 अंक से अधिक गिरा. निफ्टी 25,517 पर बंद हुआ. वित्त वर्ष 2024-25 में सकल जीएसटी संकलन अब तक के सर्वाधिक उच्चतम स्तर 22.8 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया और कच्चे तेल के मूल्यों में मामूली गिरावट दिखाई दी. ब्रेंट क्रूड $67.64 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था. और आज की पहली खबर, घरेलू शेयर बाजारों में चार दिन से चला रहा बढ़त का दौर आज थम गया और दोनों ही सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए. दुनिया के बाजारों से आ रहे मिले जुले संकेतों और मुनाफा वसूली के चलते यह गिरावट आई. 30 शेयरों पर आधारित बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 452 अंक की गिरावट के साथ 83,606 अंकों पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 121 अंक कम होकर 25,517 अंकों पर आ गया. हालांकि बम्बई शेयर बाजार के व्यापक बाजार में बेहतर प्रदर्शन दिखाई दिया और सूचकांक लगातार सातवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए. मिड कैप सूचकांक में 0.6% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.8% की तेजी दर्ज की गई.
The benchmark domestic equity indices took a breather today, halting their 4-day gaining streak. Both the indices closed with losses of around 0.5% amid mixed global cues and profit booking. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange Sensex shed 452 points to close at 83,606. The National Stock Exchange Nifty 50 lost 121 points to settle at 25,517. However, the broader market indices at the BSE outperformed the frontline indices, rising for seventh straight session. The mid-cap index added over 0.6% and small-cap index edged 0.8%.
और सेंसेक्स की 30 में से 18 कंपनियों में गिरावट दिखाई दी. गिरावट दर्ज करने वाली प्रमुख कंपनियों में एक्सिस बैंक का शेयर 2.1%, कोटक बैंक का शेयर 2% और मारुति का शेयर 1.9% से अधिक गिरा. बढ़त दर्ज करने वाली कंपनियों में ट्रेंट का शेयर 3.3% से अधिक, स्टेट बैंक का शेयर 1.8% से अधिक और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर 1.6% से अधिक बढ़ा.
In sectoral indices at the BSE, 10 out of 21 sectors ended in positive territory, while commodities closed flat. Among the top gainers, capital goods surged 1.1%, services climbed over 1% and industrials rose over 0.6%. In the top laggards, realty dipped more than 0.8%, banking slipped almost 0.6% and auto as well as metal both fell nearly 0.5% each. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,362 companies advanced, shares of 1,750 companies declined, while shares of 178 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 93 companies hit their 52-week high, while 26 hit their 52-week low. Aur Delhi se Satinder ji jud chuke hain hamare saath, apna sawal poochiye.
Yes, thank you, Market Mantra team, for connecting me. My name is Satyendra. I'm calling from Delhi, Faridabad location. The question which I have is, I have been very long-term investor. When you say long-term, since last 10 to 15 years, I have only purchased either it's a mutual fund or it's a equity. So it's very rarely that I have sold anything. And I have been continuously increasing my investment. Now, the thing is that, every year basis, there is some rebate which is there, or maybe I cannot say that that is a rebate, but a kind of long-term capital gain. So if I keep these holdings for a long term, then there is some specific limit. At this much of limit of 1 year, I can enjoy it as a part of without any taxes being levied on it. So is it right that every year basis, I should also take out some money out of it and then keep on rotating so that I can get the benefited out of it. I was having this query.
First of all, I really appreciate your patience. That really rewards you. And that's a very good thing for the stock market. Now, when we talk about the long-term capital gain tax, I mean, before 2017-18, if you have earned anything, that will be grandfathered. That means you don't have to worry about that. After 2017-18 to 24-25, the long-term capital gain will be 1 lakh. If it is more than rupees 1 lakh, then it will be taxed. But please remember, when you are going to sell it, then only it will be taxed. It's not something like that. It will be automatically deducted from your gain. Now, from this fiscal, that is 25-26, the ceiling is now 1.25 lakh. So these are the changes which you have to keep in mind. And please remember that when you are going to sell it, remember the date of purchase, and that will help you to calculate the tax.
और चलते हैं रुपए का हाल भी जान लेते हैं. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 28 पैसे कमजोर होकर 85.76 रुपए पर बंद हुआ. घरेलू शेयर बाजारों में कमजोरी के चलते रुपए में गिरावट आई. उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 97.15 पर चल रहा था.
And Mr. N.R. Prasad has connected with us from Bengaluru. Mr. Prasad, please pose your question.
Hi, good evening, Market Mantra. This is N.R. Prasad from Bangalore. Mr. Sinha, there are two questions. Normally, when we trade on the stock market, it always takes the FIFO. Whichever the bought first, it gets sold. It takes the FIFO. In case of a mutual fund, how does it act? What I meant is, would you take the latest NAV or the older NAV? That is first question. My second question is, three sectors which I would like to invest, because there are a lot of IPOs are coming in these days. In this, all sectors are there. Tell me any three sectors, especially the pharma, and any other two sectors which can we can invest for the next 1 year time. Thank you. These are my two questions.
Mr. Prashad, for the first question, the latest NAV will be used for any redemption. That means any time when we are going to sell it, or if you are going to make a fresh investment apart from the NFO. I mean, if you are if you are putting money through NFO, that's a new fund offering. That's a different issue. There will be no NAV there. That will be at par. That is rupees 10 per unit. But if the scheme is listed on the stock market, or if the scheme is not listed on the stock market, then any redemption or fresh investment will always be done on the latest NAV. To your second question, you mentioned about the pharmaceutical sector. The other sector, the other two sector would be, one is of course the capital goods would be really good one. And the third, I would advise you to go for the financial sector, because these two sectors are appears to be in a better position in next 3 to 5 years.
हमारे अगले कॉलर फरीदाबाद से हैं अमरीश जी. विनोद जी अपना सवाल पूछिए.
हाँ जी, नमस्कार मार्केट मंत्र
जी. नमस्कार.
नमस्कार.
हाँ जी, आपसे सिर्फ ये जानना है कि हमारे देश की जो इकोनॉमी अभी फोर्थ प्लेस पे या फिफ्थ प्लेस पे है, तो ये इकोनॉमी कैलकुलेट कैसे होती है? जैसे आप मेरा एग्जाम्पल लीजिए, मुझे तनख्वाह मिलती है, मैं नौकरी करता हूँ, तो तनख्वाह जुड़ती है या जो मैं खर्चा करता हूँ वो जुड़ता है उसमें, या जो मैं बैंक में सेविंग करता हूँ वो जुड़ता है. तो दूसरा पॉइंट है कि इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए मैं अपने लेवल पे क्या कर सकता हूँ.
विनोद जी, अगर मैं दूसरे सवाल की बात करूं कि आप अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं, देखिए आप कहते हैं ना कि देश और समाज और राज्य जो भी है या परिवार जो है वो एक एक व्यक्ति से बनता है, तो हर व्यक्ति का योगदान है. आप अपने उत्पादकता पर ध्यान दीजिए, किस तरीके से आप ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, उत्पादन में उत्पादकता में योगदान कर सकते हैं, यही आपका सबसे बड़ा योगदान होगा. और जाहिर सी बात है कि ईमानदारी भी बहुत ज़रूरी है. और आपका जहाँ तक पहला प्रश्न था कि आकलन कैसे होता है, तो देखिए जब बजट का दस्तावेज आता है उसमें एक हमारे पास एक टेबल होता है जिसको हम लोग कहते हैं बजट एट अ ग्लांस, और उसमें हर साल सरकार जो है ये बताती है कि मौजूदा कीमत पर अर्थव्यवस्था का आकार क्या होगा. अब जैसे अभी के समय में 3.9 trillion dollars की जो है अर्थव्यवस्था का आकार बताया गया है, ये मौजूदा कीमत पर है, यानी कि आज की कीमत पर जितने भी देश में वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उसकी कीमत क्या बनेगी, वो हमारी अर्थव्यवस्था का आकार होता है. और ये हर साल इसमें बदलाव जो है वो हमें देखने को मिलता है, निर्भर करता है कि किस तरह की परिस्थितियाँ रही हैं. अगर बहुत ज़्यादा चुनौती है, मान लीजिए कि वैश्विक परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, तो ये कम भी हो सकता है. अगर हमारा निर्यात बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है, हमारी सेवा क्षेत्र का योगदान बेहतर रहता है, हम लोग आईटी और आईटीएस सर्विसेज हम ज़्यादा बड़े पैमाने पर निर्यात कर सकते हैं, तो उसका भी फायदा हमें अपने जो है वो अर्थव्यवस्था को में देखने को मिलता है.
और दिल्ली से हमारे श्रोता केशव लाइन पे हैं. केशव नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं.
हाँ नमस्कार सर
जी. सवाल
सर मेरे दो सवाल हैं. पहला सवाल ये है, जैसे सन 1948 में हमारे देश में जो हमारा ये रुपया था, एक रुपया $2 होते थे, और आज ये उल्टा कैसे इतना हो चुका है? हमें इतनी बराबरी लाने के लिए और क्या क्या कदम उठाने जरूरी पड़ेंगे जिससे हम भी डॉलर को पीछे छोड़ दें और अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं? दूसरा सवाल ये है मेरा कि जो शेयर मार्केट में अगर एंट्री करनी है, जैसे कोई गाड़ी नहीं खरीदी, चलानी सीखनी पड़ती है, शेयर मार्केट में हमें इन्वेस्ट करने के लिए कुछ सीखना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं?
पहला जो प्रश्न है आपका कि रुपए और डॉलर की जो स्थिति है, देखिए आज दुनिया में लगभग 40% व्यापार का निपटारा जो है वो डॉलर पे होता है. डॉलर की प्रामाणिकता इस संदर्भ में भी है कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था और तमाम देशों की अर्थव्यवस्था का आकलन डॉलर के टर्म में होता है. तो डॉलर एक सर्वमान्य मुद्रा बन चुकी है, और उसका जो है अगर हम ये कहें कि रुपया उसके बराबर कब आ सकता है या रुपया उससे कब मजबूत हो सकता है, ये थोड़ी सी मतलब नामुमकिन हम नहीं कहेंगे, लेकिन काफ़ी काफ़ी मुश्किलों वाला काम है कि इस तरीके की हम परिस्थितियों को सोच सके. अभी की जो स्थिति है, जो हम लगभग एक डॉलर के लिए हम 86 रुपये 85 से 86 रुपये हम जो है चुका रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें अचानक वो घट करके जो है वो 50 रुपये पे या 25 रुपये पे आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ये इसमें इसके लिए आप मतलब ऐसी कोई उम्मीद ना करें, वो बेहतर होगा। दूसरा आपका प्रश्न था शेयर बाज़ार को लेकर के। देखिए, शेयर बाज़ार में पैसा लगाना है तो सबसे पहले आपको अपने पैसे को पहचानना होगा और आपको ये भी देखना होगा कि आप कितना जोखिम उठा सकते हैं, क्योंकि शेयर बाज़ार बहुत ही जोखिम भरा खेल है। अगर आप समझते हैं कि नहीं, हम जोखिम नहीं उठा सकते, तो आपको शेयर बाज़ार का रुख नहीं करना चाहिए। आपके पास विकल्प है, पोस्ट ऑफिस के सेविंग स्कीम्स की बात कर लें, म्यूचुअल फंड हैं, आप बैंक के फिक्स डिपॉजिट हैं, इन जगहों पर जाकर के पैसा लगा सकते हैं। हाँ, अगर आपसे कोई कहे कि शेयर बाज़ार में बहुत मुनाफा हो रहा है, याद रखिए अर्थशास्त्र का सिद्धांत है मुनाफा जोखिम का प्रतिफल है। बहुत ज़्यादा जोखिम उठाना भी उचित नहीं है, और अगर आप जोखिम नहीं उठा सकते हैं तो शेयर बाज़ार में आप ना जाएं।
हमारे अगले कॉलर महाराष्ट्र से हैं, केशव शुक्ला जी, अपना सवाल पूछिए।
जी, गुड इवनिंग आला से। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कोई भी मटेरियल या कोई भी पैकेट रहता है उसके नीचे कंडीशन सप्लाई लिखा रहता है या सस्ते लागू लिखा रहता है, तो उसके थ्रू कंपनी कस्टमर से क्या क्या बेनिफिट ले सकती है, इसके विषय में जरा ब्रीफ में बताइए।
देखिए, नियम व शर्तें लागू हर सेवा के लिए जो है वो जुड़े हुए हैं। जैसे आप बैंक में अकाउंट खोलने जाते हैं तो वहाँ पर भी जिस तरीके के फ़ायदे की बात की जाती है या जिस तरीके के ब्याज दर देने की बात की जाती है, वो सब के सब उसमें नीचे लिखा रहता है, नियम व शर्तें लागू। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बताएं, आप यदि बैंक में सेविंग अकाउंट खोलते हैं, जिसको हम लोग बचत खाता कहते हैं, तो उस दिन पे जिस दिन आपने खोला, मान लीजिए कि उस दिन ब्याज की दर 2.75% है, लेकिन अगर वो ब्याज की दर घट करके 2.5% आ गए, तो वो आपके लिए आपको स्वीकार करना होगा, क्योंकि वो नियम और शर्तें में लागू है। इसी तरीके से जब आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, वहां पर मान लीजिए कि आपने जिस तारीख को फिक्स डिपॉजिट किया, उस दिन आपको 6.5% ब्याज देने की बात की गई है, तो जब तक आपके पास वो मियादी जमा होगी तब तक आपको 6.5% मिलेगा। हाँ, अगर आप उसको रिन्यूअल कराने जाएंगे, यानी कि दोबारा उसको निवेश जमा करना चाहेंगे, तो उस तारीख की ब्याज दर है। तो नियम व शर्तें जरूर पढ़नी चाहिए। कभी भी कोई सेवा ले रहे हैं या कोई वस्तु खरीद रहे हैं और अगर उस पर लिखा हुआ है छोटे अक्षरों में नियम व शर्तें लागू, तो आपको पूछना चाहिए। यहां तक कि जब आप वेबसाइट पे भी आप जाते हैं तो उसमें भी लिखा हुआ होता है नियम और शर्तें लागू। जरूर पढ़िए, ये आपके हित में है। एक उपभोक्ता के लिए जरूरी है कि वो अपने अधिकार को जाने, लेकिन वो अधिकार को तभी जान सकता है जब वो नियम और शर्तों को पढ़ेगा। अगर आंख बंद करके हस्ताक्षर कर दे या स्वीकृत कर दे, तो फिर आपके लिए जो अधिकार हैं वो खत्म हो जाएंगे।
और दिल्ली से हमारे श्रोता संजीव लाइन पे हैं। संजीव, नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं।
नमस्कार जी। सर, एक शेयर है जो कि हम 2022 से होल्ड कर रहे थे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में है, और इस शेयर में नवंबर 2024 में हमें स्प्लिट हुआ तो 500 शेयर और मिल गए। आज उसे बेचना है तो 700 शेयर बेचने हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो आप बेचेंगे तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही आएगा, जहाँ जिस दिन को आज से 6 महीने पहले या 7 महीने पहले स्प्लिट हुआ और 500 शेयर और मिले, इसका गवर्नमेंट क्या ट्रीटमेंट करेगी?
जो बोनस शेयर, अगर मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ, तो आपको बोनस शेयर मिले हैं और जिस बोनस शेयर को आप बाकी दूसरे शेयरों के साथ बेचना चाहते हैं, तो आपको दोनों ये दिखाना होगा, क्योंकि जो बोनस शेयर जारी करने की तारीख थी वो आपकी खरीद की तारीख मानी जाएगी। तो जो आपके, अगर आप अभी नवंबर में हुआ है और ये महीना चल रहा है जून का, अब तो खैर जुलाई भी शुरू होने वाला है एक दिन के बाद, तो 6 या 7 महीने हुए हैं, तो अभी आप पूरा, आपने साल पूरा नहीं किया, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स उस पर आएगा, लेकिन बाकी जो हैं वहाँ पर आपके लिए जो आपका 1,25,000 रुपये के ऊपर का जो मुनाफा है उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना है।
Our next caller is from Kolkata. लक्ष्मीपत जी, अपना सवाल पूछिए।
हाँ, हेलो, नमस्कार मार्केट मंत्रा।
नमस्कार
स्किनर साहब को भी नमस्कार।
नमस्कार
सर, ये हम लोग टैक्स पेयर खोए रहते हैं, इनकम टैक्स टैक्स पेयर, और डिपार्टमेंट हम लोगों को जगाता रहता है टैक्स भरिए, अब डोंट वेट टिल लास्ट डेट, सर ऐसे करके मैसेज भेजता रहता है, और इस साल सर डिपार्टमेंट हो गया और अभी तक ITR 203 जो है वो ऑनलाइन चालू नहीं हुआ। हम लोग रोज परेशान होते हैं, देखते हैं, डेट भरा दिया वो अलग बात है, लेकिन हमें अपना काम करना है। जुलाई अगस्त में मैं टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करता हूँ, तो मैं वैसे फालतू बैठा रहता हूँ, मतलब एक बहुत परेशान है सर, ये क्यों हो रहा है, क्या कारण है, थोड़ा आप इसमें प्रकाश डालिए।
देखिए, इस बार अगर आपने गौर किया होगा कि अमूमन ITR के फॉर्म्स जो हैं वो पहली अप्रैल से ही जो है वो अपलोड कर दिए गए थे पिछले साल, अगर आप याद करें। इस साल एक महीने की देरी हुई और उसमें भी जो रिटर्न का प्रोसेस है वो और देरी से शुरू हुआ, और अभी ITR 1 और ITR 4, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, वो उस पर भी चल रहा है। ITR 2 और ITR 3 की जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो उस पर अभी काम चल रहा है। और चूंकि आपके पास 15 सितंबर तक का समय है, तो आपकी परेशानी को हम समझ रहे हैं कि आप उसको जल्द से जल्द भर करके आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन विभाग चाहता है कि आपकी जिम्मेदारी को निभाने का अनुभव बेहतर रहे, इसीलिए वो उस पर काम कर रहा है।
और बिहार से हमारे श्रोता टिंकू लाइन पे है। टिंकू नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो,
नमस्ते सर।
नमस्ते टिंकू जी, बताइए क्या पूछने।
सर मेरा एक सवाल है, जो किसान मानधन योजना जो मोदी जी लॉन्च किए थे 9 दिन पहले, ये क्या पॉलिसी है, इसके बारे में हमें जानकारी चाहिए।
अगर मैं आपके सवाल को सही समझ पा रहा हूँ तो आप किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, अमरीश जी शायद।
हाँ, यही।
तो ये देखिए, 2019 के अंतरिम बजट में इसका ऐलान हुआ था, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1 दिसंबर 2018 से इसे लागू किया गया। 3 किस्तों में 6,000 रुपये देने की व्यवस्था है, और इसके लिए बाकायदा जो है इसका आपके जो राज्य हैं, आप जिस जगह पे हैं वहाँ पे आपके लिए एक पंजीकरण जिसे कहा जाए सामान्य व्यवस्था में आपको करनी होगी, और फिर आपको ये पैसा जो है वो DBT के जरिए, यानी कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए आपके खाते में आ जाएगा। इसके लिए कोई बहुत परेशानी आपको नहीं उठानी है। हाँ, कृषक होना आपके लिए जो है ये ज़रूरी है।
और चलते हैं एशिया और यूरोप के बाजारों का हाल जान लेते हैं। आज प्रमुख एशियाई बाजारों में मिला जुला रुख रहा। जापान का निकेई सूचकांक 0.8% से अधिक बढ़त के साथ बंद हुआ। हालांकि शुरुआती कारोबार में वह 11 महीने से अधिक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स लगभग 0.6% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 0.5% से अधिक बढ़ा। दूसरी ओर हांगकांग शेयर बाजार का हैंगसेंग इंडेक्स 0.8% से अधिक गिरा। सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स लगभग स्थिर रहा। यूरोप के प्रमुख बाजारों में दिन के कारोबार के दौरान मिला जुला रुख दिखाई दिया। जर्मनी के डैक्स और लंदन के फुटसी दोनों में 0.1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक फ्रांस के कैक में कोई खास बदलाव नहीं हुआ।
और अमरीश जी, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ दिल्ली से। जगदीश जी, अपना सवाल पूछिए।
हाँ जी, सभी को, एक्सपर्ट को और अपने एंकर को नमस्कार।
नमस्कार।
मैं दो छोटे से क्वेश्चन है। एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो 12 रुपए वाला इंश्योरेंस बीमा जो मोदी साहब की तरफ से था वो 20 रुपए हो गया, तो उसमें क्या क्या बेनिफिट है। और प्लस एक क्वेश्चन और है कि जैसे एजुकेशन लोन होता है तो जो इनकम टैक्स पेयर होते हैं या बड़े जॉब पे हैं या बड़ा बिजनेस कर रहे हैं उनको तो मिल जाता है, क्या छोटे दुकानदार को जो कि उसकी इनकम भी इतनी नहीं कि इनकम टैक्स दे सके, क्या उसके बच्चे के लिए इनकम टैक्स एजुकेशन लोन का कोई प्रावधान है कि नहीं, ये जानना चाह रहा हूँ। धन्यवाद सर।
जगदीश जी, देखिए एजुकेशन लोन में जो है वो तीन तरह की बातें आप याद रखिएगा, 4 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए और उससे ज़्यादा का। 4 लाख रुपए तक के लोन के लिए आपको किसी भी तरीके से कोलेट्रल या कोई चीज़ ऐसे देने की ज़रूरत नहीं। 7.5 लाख रुपए तक एक गारंटी और उसके ऊपर जो है वो कोलेट्रल की बात है। जहाँ तक रहा सवाल कि इसके लिए आय की सीमा, तो ऐसा तो नहीं है कि इस आय की सीमा को जो है वो विशेष महत्व दिया जाएगा। हाँ, ये ज़रूर देखा जाता है कि जिस छात्र को दिया जा रहा है और रकम क्या है और किस चीज़ की वो पढ़ाई कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, देखिए बैंक आपको पैसा देगा तो वो कहीं ना कहीं तो ये भी देखेगा कि उसको पैसा वापस आएगा कि नहीं। और एजुकेशन लोन में क्या होता है कि मोरेटोरियम होता है, यानी कि जब छात्र पढ़ाई पूरी कर लेता है, नौकरी शुरू करता है, तब उसे लोन की अदायगी करनी पड़ती है। हाँ, उसके पहले अगर कोई अभिभावक चाहें तो वो उसको वापस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये तथ्य सही नहीं है कि आय विशेष के लोगों को ही मिलता है। दूसरा जो आपका पहला जो प्रश्न था, प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा को लेकर के, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये योजना जो है आप किसी भी बैंक में आप जा करके इसमें इनरोल करा सकते हैं। 1 साल के लिए होता है और इसमें अगर भगवान न करे अगर किसी भी तरीके की दुर्घटना हो जाए तो इसके बदले में आपको एक निश्चित रकम जो है वो मिलती है।
और चलते हैं जीएसटी संग्रह का हाल भी जान लेते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में वस्तु और सेवा कर जीएसटी का सकल संग्रह 5 साल में दोगुना होकर 22.8 लाख करोड़ रुपए के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। 2020-21 में कुल संग्रह 11.37 लाख करोड़ रुपए था। जीएसटी डेटा के अनुसार औसत मासिक संग्रह 1.84 लाख करोड़ रुपए रहा।
From GST News, let's see what the Index of Industrial Production has to say. India's industrial production growth, measured by the Index of Industrial Production IIP, slowed to 1.2% in May as compared to revised growth rate of 2.6% in April, according to the data released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation. Among the three major components of IIP, manufacturing rose 2.6% in May as compared to 3.4% in the previous month, while electricity generation contracted by 5.8%, reversing growth rate of 1.1%, and mining output also contracted marginally by 0.1%.
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक लेख साझा किया जिसमें बताया गया है कि किस तरह नीतिगत प्रोत्साहन और नवाचार भारत को वैश्विक इस्पात नेता बनने की यात्रा को आकार दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी के एक पोस्ट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे और रक्षा से लेकर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और स्वच्छ ऊर्जा तक इस्पात उभरते भारत की रीढ़ है।
And the government has left interest rates unchanged for various small savings schemes, including PPF and National Savings Certificate, NSC, for the sixth straight quarter beginning 1st of July. As per the notification from Finance Ministry, deposits under the Sukanya Samriddhi scheme will attract an interest rate of 8.2%, while the rate on a three-year term deposit remains at 7.1% prevailing in the current quarter. Union Minister for Shipping and Waterways Sarbanan Sonowal has said that central government has a vision to professionalize 5,000 kilometers of navigable waterways in the country, connecting the ASEAN nations by cruise. Speaking at the inaugural of the first ASEAN-India cruise dialogue, he said that the government initiative of Sagarmala has a target of 1 million passengers in 2029. Crude oil prices held steady today as West Asia tensions eased, while a possible OPEC Plus output increase in August and uncertainty over the global demand outlook weighed on the market. Brent crude was trading over almost 0.2% down at $67.64 per barrel, and WTI crude was also trading over 0.2% down at $65.36 per barrel when reports last came in. Shishir, what's your expert comment on this news of crude oil?
I think the conflict between Israel and Iran, if it is slightly slowing down, that is going to have some impact on the crude prices. And also the Strait of Hormuz, which was critical transit point for almost 20% of oil export, that has not been blocked. So that is also a good news. And that is why you are seeing that crude prices are almost flat. And it's a good news for India.
In the Indian bullion market, 24 karat gold was trading over 0.5% up at 96,270 rupees per 10 grams. And silver 999 fine was trading nearly flat at 1,06,500 rupees per kilogram a short while ago.
और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक अगस्त में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.54% बढ़कर 95,981 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं जुलाई में आपूर्ति की जाने वाली चांदी का वायदा मूल्य 0.07% बढ़कर 1,05,300 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा था। और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। शशि जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने, प्रमुख खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
Listeners, before we wrap up today's show, a reminder of the headlines. Benchmark domestic equity indices snap 4-day gaining streak. Sensex drops over 450 points. Nifty closes at 25,517. Gross GST collections hit an all-time high of 22.8 lakh crore in the financial year 2024-25. And crude oil prices fall slightly. Brent crude trading at $67.64 per barrel. And that's it in today's edition of Market Mantra. Goodbye. Market Mantra.